हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। धृति उस लड़की से अधिक सुंदर थी। एक कारण उसका ऊपरी होंठ का तिल भी था, जो उस लड़की के होंठ पर नहीं था। धृति ने पूर्ण वस्त्र धारण किए हुए थे, वहीं वो लड़की धृति के सामने क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स पहने खड़ी थी। धृति के लंबे घने रेशमी बाल उसकी कमर तक पहुंच रहे थे, जबकि उस लड़की के बाल कंधों से कुछ नीचे तक ही थे। दोनों में काफी अंतर था, पर ध्यान पूर्वक देखने पर ही वो स्पष्ट होता था, अन्यथा पहली बार देखने वाला उसे धृति समझ सकता था। दोनों को पहचानने में भ्रम होना सामान्य बात थी। जब उस लड़की की नज़र धृति पर पड़ी तो उसके चेहरे पर क्रोध, चिढ़ और रोष के भाव उभर आए, मानो धृति उसके जन्मों की शत्रु हो, जबकि धृति के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। हाँ, वो कुछ हैरान अवश्य लग रही थी। धृति ने उसे देखा और हल्की हैरानी से पूछा, दी, आप वापस कब आईं? जब तुम अपने प्रेमी के साथ छुपकर शादी करने और उसके साथ ऐशो आराम भरी जिंदगी का मजा लेने में व्यस्त थी। उस लड़की का नाम सृष्टि था, धृति की बड़ी बहन, बस कुछ मिनटों की बड़ी। असल में दोनों जुड़वां थीं, पर सृष्टि धृति से कुछ मिनट पहले इस दुनिया में आई थी, इसलिए धृति उसे दी कहती थी। उन दोनों बहनों का रिश्ता कैसा और क्यों था, ये आगे की कहानी में आपको मालूम चलेगा। फिलहाल कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सृष्टि ने बेरुखी भरे लहजे में जवाब दिया और नफ़रत वो गुस्से भरी नज़रों से उसे घूरने लगी। एक बार फिर उस शादी के लिए धृति को ताना दिया जा रहा था, जो उसकी मजबूरी थी, पर उसकी इच्छा बनाकर उस पर थोपी गई थी। धृति को जवाब नहीं दे सकी। इतने में सृष्टि ने नफ़रत भरी निगाहों से उसे घूरते हुए रूखे स्वर में कहा, मम्मी ने तुझसे सभी रिश्ते तोड़कर तुझे इस घर से निकाला था ना, फिर अब वापस अपना मनहूस चेहरा लेकर यहाँ क्यों चली आई तू? पहले ही तेरी करतूत के कारण हमारा सर उठाकर चलना मुश्किल हो गया है। अब क्या चाहती है कि तेरे कारण मैं और माँ शर्म से अपनी जान दे दें? पापा को तो पहले ही छीन चुकी है हमसे, अब क्या मुझे और माँ को मारकर तेरे दिल को चैन पड़ेगा? क्या चाहती है तू हमसे? चली गई ना अपने अमीर प्रेमी से शादी करके, तो अब पीछा छोड़ हमारा। जाकर ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जी और हमें भी सुकून से अपनी जिंदगी जीने दे। सृष्टि की बातें सुनकर धृति के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई, पर शायद उसे इसी व्यवहार की उम्मीद थी सृष्टि से, इसलिए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने गहरी सांस छोड़ी और अपने पर्स से एक लिफाफा निकालकर सृष्टि की ओर बढ़ाते हुए बोली, जॉब चले जाने के कारण पिछले महीने पैसे नहीं दे सकी थी, ये मेरी इस महीने की सैलरी, हमें तेरे पैसों की कोई जरूरत नहीं। धृति अपनी बात पूरी नहीं कर सकी थी कि सृष्टि उसकी बात काटते हुए एकदम से उस पर बरस पड़ी। ये पैसे देकर क्या साबित करना चाहती है तू कि हम तेरे पैसों पर जी रहे हैं, और अगर तू पैसे नहीं देगी तो हम अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकेंगे। ये पैसे देकर हमें नीचा दिखाने और खुद को महान दिखाने आई है न तू, कि यहाँ से जाने के बाद भी हमें पैसे देकर हमारी जरूरतें पूरी कर रही हो, पर हमें अब तेरे किसी एहसान की कोई जरूरत नहीं है। तेरे पैसों के बिना भी हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। तुझे अब हमारी झूठी फिक्र करने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी की एक बेटी जरूर मर गई है, पर दूसरी अब भी जिंदा है, और मैं मम्मी को तुझसे भी बेहतर जीवन दूंगी। तो जा यहाँ से, जाकर अपने पति के साथ अय्याशी कर। मैं हूँ यहाँ, और मुझे और मम्मी को तेरी, तेरे एहसान की, तेरी दी भीख या तेरे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। धृति के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे। वो खामोशी से सृष्टि की बातें सुनती रही। सृष्टि ने पहले तो धृति को जी भर कर सुनाया, अपनी सारी भड़ास उस पर निकाल ली, फिर तिरछी मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोली, मैंने तो सुना कि तूने बहुत लंबा हाथ मारा है, किसी अमीर जादे को अपने हुस्न और प्यार के जाल में फंसाकर उससे छुपकर शादी की है, फिर जॉब क्यों कर रही है तू? कहीं तेरा वो प्रेमी सिर्फ देखने में ही तो अमीर नहीं था, किसी कंगाले के चक्कर में तो नहीं फंस गई तू? खैर, किसी के भी चक्कर में फंसी हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इस बात से बड़ी खुश हूँ कि फाइनली अब मेरा तुझसे पीछा छोड़ गया, धृति नाम का ग्रहण मेरी जिंदगी से उतर गया। बस अब जब तू मेरी जिंदगी में दोबारा कभी लौट कर आने की कोशिश भी मत करना, भूल जा कि तेरा कोई घर और परिवार भी था, और जा अपने पति के पास, दोबारा कभी यहाँ कदम मत रखना। सृष्टि ने भी उसे बुरी तरह लताड़ा, उसे जलील किया और यहाँ से जाने को कहा। धृति ने उसे देखा और गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, बचपन से आपकी नफरत सहती आ रही हूँ, जबकि इसकी वजह तक नहीं जानती अब तक। ऐसी ही एक नफरत एक बार फिर मेरे हिस्से आई है। शायद महादेव ने मुझे लोगों की बेवजह की नफरत सहने के लिए ही बनाया है। खैर, मैं जानती थी कि यहाँ यही होगा, फिर भी मैं इस घर की बेटी होने का फर्ज निभाने यहाँ चली आई। और अगर आपको या माँ को सच में इन पैसों की जरूरत नहीं, तो मैं किसी जरूरतमंद को ही ये पैसे दे दूंगी। और जाते हुए इतना जरूर कहूंगी कि आपको मुझसे भले नफरत रही हो, पर मैंने कभी किसी से नफरत नहीं की। मुझे आपने और मम्मी ने पराया करके यहाँ से निकाल दिया, तो दोबारा कभी मैं यहाँ कदम नहीं रखूंगी। पर अगर कभी आपको या मम्मी को मेरी जरूरत हो, तो फोन कर लीजिएगा मुझे, मैं अपना फर्ज जरूर निभाऊंगी। धृति ने दृढ़ता से अपनी बात कही और वहाँ से चली गई। सृष्टि ने जाती हुई धृति को देखते हुए मन ही मन कहा, देखने में ये इस शादी से खुश तो नहीं लग रही थी, पर फंसाया तो इसने एक अमीर आदमी को ही है, जो देखने में हैंडसम भी कम नहीं। किस्मत तो चमक गई इस धृति की बच्ची की, आगे की सारी जिंदगी इसकी ऐशो आराम से बीतेगी। पता नहीं कहाँ से इतनी अच्छी किस्मत लेकर आई है कि सब अच्छी चीज इसे ही मिलती है, और अब भी कितना अच्छा हैंडसम और अमीर पति मिल गया उसे। एक पल में ये इस झोपड़ी से निकलकर सीधे आलीशान महल में चली गई, और मैं सालों से बस कोशिश ही करती रह गई, पर इस झोपड़पट्टी से बाहर ही नहीं निकल सकी। मुझे भी अब किसी अमीर जादे को अपने जाल में फंसाना होगा, ताकि आगे की जिंदगी बिना किसी चिंता फिक्र के आराम से बीते। और भगवान करे कि तेरी जिंदगी में खाली दुख ही आए। जितना तूने मुझे परेशान किया है, उतना ही खून के आंसू रोए तो। तुझे दर्द से तड़पते देखूंगी, तब जाकर मेरे मन को सुकून मिलेगा। और देखियो, तुझसे भी बड़े मुर्गे को फंसाऊंगी मैं। इस मामले में मेरी किस्मत तुझसे बेहतर होगी। सृष्टि के दिल में जाने क्यों धृति के लिए इतनी नफरत भरी थी, और जाने उसकी ये नफरत उनकी जिंदगी को किस मोड़ पर लाकर खड़ा करने वाली थी। सृष्टि कुछ पल वहीं खड़ी नफरत भरी निगाहों से धृति को घूरती हुए उसे बद्दुआ देती रही, फिर दरवाजा बंद करके अंदर चली आई। धृति ने वो पैसे पास के ही एक वृद्धाश्रम में दान कर दिए और रायजादा मेंशन लौट गई। ड्राइवर ने अर्णव को धृति के घर जाने और वृद्धाश्रम जाने की बात बताई, पर आज वो आगे तक नहीं गया था, इसलिए धृति के घर पर क्या हुआ ये बात नहीं जानता था वो। अर्णव को धृति के वृद्धाश्रम जाने की बात पता चली तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने तुरंत अपने आदमी को वहाँ भेजकर पता करवाया कि धृति वहाँ क्यों गई थी, और जब उसे वजह पता चली तो वो हैरान रह गया कि धृति ने अपनी पूरी एडवांस सैलरी वहाँ दे दी थी। धृति घर आकर अपने कमरे में बैठी गहरी सोच में गुम रही। मरना चाहती थी वो, पर मौत आ नहीं रही थी, और जब तक मौत नहीं आ जाती, उसे जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी को धक्का मारकर आगे तो बढ़ाना ही था, पर इसी में लगी थी वो। आज भी अर्णव शाम को वापस आया तो धृति रोज की तरह आज भी पहले से उसके कपड़े निकालकर रख चुकी थी। आज फिर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। डिनर के वक्त भी धृति खामोशी ही रही, सोई भी पूल साइड।
अगले दिन वो जरा जल्दी उठ गई। उसने जल्दी जल्दी अर्णव से जुड़े सभी काम निपटाए और नहाने लगी। अर्णव घर में बनी जिम से बाहर निकला तो आज प्रोटीन शेक धृति के बजाय शीला लेकर आई। ये देखकर उसकी त्योरियां चढ़ गईं। तुम ये क्यों लेकर आई हो? धृति कहाँ है? अर्णव ने गुस्से से सवाल किया, जिसे सुनकर शीला ने जरा घबराते हुए कहा, सर, मैडम ने ही बनवाया है। उन्हें आज ऑफिस जाना है, इसलिए वो मुझे ये आपको देने को कहकर नहाने चली गई हैं। पहले तो अर्णव गुस्से से फुफकार रहा था, पर जब उसने ऑफिस जाने वाली बात सुनी तो उसके लबों पर कुटिल मुस्कान फैल गई। अर्णव ने सर हिला दिया और प्रोटीन शेक पीते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। अर्णव ने कमरे में कदम रखा तो नजरें सीधे सामने से आती धृति पर पड़ीं। कॉलर वाला वाइट कुर्ता, नीचे से ब्लू जीन्स, लंबे सुनहरे रेशमी बालों को गूंथकर चोटी में बांधा हुआ था, जो उसकी कमर पर नागिन जैसे बल खा रही थी। बालों की कुछ छोटी छोटी लटें निकलकर उसके गालों पर अटखेलियां दिखा रही थीं। मांग में हल्का सिंदूर झलक रहा था। कत्थई आंखों में गहरा काजल लगा था। गुलाबी लबों पर गुलाबी रंग का बेबी लिप्स लगाया हुआ था। गले में मौजूद मंगलसूत्र सूट के नीचे छुप गया था। बाएं हाथ की कलाई में वॉच बंधी थी और पैरों में फ्लैट सैंडल्स। ऊपरी होंच पर मौजूद तिल आज फिर फाउंडेशन से छुपा लिया था। इतने दिनों में अर्णव ने उस तिल को नहीं देखा था। ज्यादातर धृति उसे छुपा कर रखती थी, और जब दिखता तब अर्णव ध्यान नहीं देता था। ज्यादा मेकअप नहीं किया था उसने, फिर भी बहुत प्यारी लग रही थी। मांग में सजा सिंदूर उसके शादीशुदा होने की गवाही दे रहा था। उस दिन अर्णव के सिंदूर और मंगलसूत्र के न होने के कारण उसकी नियत और चरित्र पर सवाल उठाने के बाद से धृति हमेशा सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर ही रहती थी। अर्णव ने उसे ऊपर से नीचे तक अपनी गहरी आंखों से स्कैन किया, फिर उसके तरफ कदम बढ़ा दिए। धृति अपने पर्स में कुछ ढूंढते हुए आगे बढ़ रही थी, इसलिए अब तक उसने सामने से आते अर्णव को नहीं देखा था। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद जाकर उसने निगाहें सामने की तरफ उठाईं और ठीक सामने खड़े अर्णव को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। एक पैर हवा में उठा ही रह गया। पहले तो धृति स्तब्ध सी उसे देखती रही, फिर तुरंत ही हड़बड़ाहट में कदम पीछे हटाना चाहे, पर तब तक अर्णव ने उसकी बांह पकड़कर उसे वापस अपने करीब खींच लिया। धृति की आंखों की पुतलियां हैरानी से फैल गईं और भय से शरीर कांप उठा। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को अर्णव से टकराने से बचाया और आंखें बड़ी बड़ी करके घबराई हुई सी उसे देखने लगी, जबकि अर्णव की नजरें उसकी गर्दन पर टिकी थीं।